السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور نیچرلی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آپ کی آئیز اٹریکٹیو، ڈیپ بلیک اور خوبصورت تھی، اور ان کی وائٹنس میں باریک سرخ ڈورے لال نشانات تھے۔ ان آنکھوں پر گھنی یعنی ڈینس سیاہ یعنی بلیک اور بہت ہی پیاری پلکیں تھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں خوب سیاہ یعنی ڈیپ بلیک، سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی محسوس ہونے والی، اور پلکیں گھنی یعنی ڈینس اور لمبی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھوں کی پلکیں نہایت لمبی تھیں۔ ناظرین، کتابوں میں حضرت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ مکہ پاک میں مسلسل کئی سال سے قحط آ گیا۔ آپ نے خواب میں ایک غیبی آواز کو سنا جو قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ تمہارے اندر ایک اللہ کا نبی آ چکا ہے، اس کی خدمت میں جاؤ، اس کی برکت سے قحط ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اس غیبی آواز نے کہا کہ اس کا جسم درمیانہ، اس کا کلر سفید، پلکیں لمبی، گھال سیدھے اور ناک بلند ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر فرماتے تھے، آپ کا دیکھنا فقط آنکھ کے ایک حصے سے ہوتا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، لیفٹ اور رائٹ، اوپر نیچے اور اندھیرے اجالے میں ایک جیسا دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو میں بے شک تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری تم سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ ہی تمہارا رکوع، یعنی کچھ بھی ہڈن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ میں وہ ہر چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ایک بار عرفہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں نے سب کو بخشا سوائے ظالم کے، کیونکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آپ نے عرض کی، یا رب، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں کوئی اچھا درجہ عطا فرمائے اور ظالم کو بخش دے۔ یہ عرض قبول نہ ہوئی۔ پھر صبح مزدلفہ میں پیارے آقا نے یہی دعا مانگی تو قبول ہو گئی۔ آپ دعا کے آخر میں مسکرائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، آقا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو جب علم ہوا کہ اللہ پاک نے امت کے حق میں میری دعا قبول فرمائی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ حسد کے باعث اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور سخت حسرت و افسوس کر رہا ہے، تو مجھے یہ دیکھ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر کر دیا، بس میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست عاشق رسول، کمال کے شاعر امام احمد رضا خان نے کمال کا شعر ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سر عرش کا مطلب عرش کے اوپر، ملکوت फरिश्तों के रहने की जगह। आप कहते हैं कि नबी करीम जमीन व आसमान हो या मकान व ला मका हो, कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो आपकी निगाहों के सामने ना हो। नाजरीन, यही वो कायनात की वाहिद और मुबारक आंखें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने दीदार का शर्फ अता फरमाया कि हमारे प्यारे आका ने मेराज की रात जागती आंखों से रब करीम का दीदार किया। ये शर्फ ना तो पहले किसी आंख को नसीब हुआ, ना कयामत तक किसी आंख को नसीब होगा। शायर ने क्या खूब कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहां हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हाँ हाँ, देखो तो अल्लाह जो सिर्फ गैब नहीं बल्कि सबसे बड़ा गैब है कि हमसे फरिश्ते गैब हैं और फरिश्तों से अल्लाह गैब। तो जब हुजूर ने अल्लाह को देख लिया तो और क्या आपसे पोशीदा रहा। व्हाट इज हिडन फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम की मुबारक आंखें कमाल दर्जे की शर्म हया वाली थी, हमेशा नीची झुकी रहती। आपका तरीका आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं था, बल्कि जब किसी को देखना होता तो आप एक नजर देखकर निगाह हटा लेते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी इस मुबारक अदा को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशी कुवारी लड़की से भी ज्यादा हया के मालिक थे। हम आपके चेहरे मुबारक के आसार से ही आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी को महसूस कर लिया करते। आपकी आंख मुबारक में शफकत व मोहब्बत और शर्म व हया की मिली जुली कैफियत हर वक्त मौजूद रहती। यही वजह है कि हुलिया मुबारक बयान करने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा भी जिक्र की है कि आपकी नज़र मुबारक बजाय ऊपर उठने के अक्सर ज़मीन की तरफ झुकी रहती। आप बहकर व शर्म व हया होने की वजह से किसी को नज़र भर कर नहीं देखते थे, बल्कि बड़ी ही प्यारी प्यारी आँखों के एक हिस्से से नज़र फरमा लेते। अल्लाह पाक ने आपकी नज़र मुबारक को क्या मकाम अता फरमाया है कि दुनिया व आखरत में हर जगह हर किसी की बिगड़ी आपकी नज़र शफकत ही से बन रही है। आपकी नज़रों ने कैसे कैसों को बदल दिया, इस हवाले से एक वाकिया आपके सामने डिस्कस करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाकिया है शुरू इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के एक दुश्मन का, जो बदर में भी मुसलमानों के खिलाफ रहा, उहद में भी काफिरों को बदला लेने पर उभारने वाला ये शख्स था, और मुसलमानों को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका बाप भी इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। फतेह मक्का के बाद जब इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में पेश किया तो आपने इसकी तरफ निगाहें मुबारक उठाई और देखकर फरमाया, इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में जाए मुझे ये पसंद नहीं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि फतेह मक्का के मौके पर इसके हाथों एक मुसलमान सहाबी शहीद हो गए। जब इसकी खबर हुजूर को पहुंची तो आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने की वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, आलम गैब में ये फैसला हो चुका है कि ये कातिल और मकतूल यानी कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों हाथों में हाथ डालकर जन्नत में जाएंगे। एनीवे, उस शख्स के लिए इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल चीज थी, इसलिए ये मक्के से भागकर दरिये की तरफ चला गया। जब ये कश्ती में बैठकर यमन की तरफ रवाना हुआ तो पानी में तूफान उठने लगा। तमाम कश्ती वाले अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद करने लगे और उससे कहा कि तू भी खुदा को याद कर। उसने कहा, क्या तुम उस खुदा की बात कर रहे हो जिसकी तरफ मोहम्मद दावत दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं तो उससे भाग कर आया हूँ। उसके बाद जब उसकी नज़र कश्ती पर पड़ी तो कश्ती पर उसे ये कुरानी अल्फाज नक्श हुए दिखाई दिए जिनका तर्जुमा है, और तुम्हारी कौम ने उसको झुटलाया हालांकि हक यही है। उस शख्स ने उस नक्श कुरानी को खुरचने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। उसी वक्त आपकी निगाह मुबारक की करामत जाहिर होना शुरू हो गई, उसके बातिन में तब्दीली जाहिर होना शुरू हो गई। उधर उसकी वाइफ जो मुसलमान हो चुकी थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए अमान मांगी। आपने उसे अमान देने का ऐलान फरमा दिया। जब ये खबर उसको पहुंची तो वो हैरान रह गया कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इतनी तकलीफ़ों के देने के बावजूद भी मोहम्मद ने मुझे अमान दे दी। चुनाचे ये अपनी वाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी के लिए यमन से वापस पलटा। जब ये शख्स मक्का पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इसके बारे में फरमा दिया कि वो मोमिन और मुहाजिर होकर आ रहा है, लिहाजा इसे और इसके बाप को कुछ ना कहना ताकि इसे बुरा ना लगे। प्यारे आका खैमे में तशरीफ फरमा थे। इसकी वाइफ हाजिर हुई और अर्ज की, आका मेरे शोहर हाजिर हैं। ये सुनकर आप इस हाल में उठे कि आपकी चादर मुबारक कंधे से नीचे गिर गई। वो हाजिर हुआ, आपने अपनी निगाह करम उस पर डाली और फरमाया, मरहबा। ये बोला, मैंने सुना है कि आपने मुझ जैसे गुनाहगार और जालिम को अमान दे दी है। आपने फरमाया, हाँ। नाज़रीन, यहाँ बस आपकी जबान मुबारक से हाँ निकलना था, ये शख्स कलमाए शहादत पढ़कर दारा इस्लाम में दाखिल हो गया और इसने कहा, मुझ जैसा कोई जालिम नहीं और आप जैसा कोई करीम नहीं। आपने फरमाया, मांग क्या मांगता है? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे पिछले गुनाह तमाम गुनाह माफ हो जाएं और अपनी बाकी लाइफ मैं आपके मिशन की खिदमत में गुजारूं। नाजरीन, आप जानते हैं वो शख्स कौन था? वो दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे हजरत इकरिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि जब हुजूर ने इनको देखकर फरमाया था कि इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में जाएगा, मुझे ये पसंद नहीं, इकरिमा कहते हैं कि इसके बाद मैं जिधर जाता हुजूर का चेहरा मेरे सामने आ जाता, मैं जिस बुत के करीब होता वो हुजूर का सच्चा होने की गवाही देता। चूंकि इस्लाम कबूल करना मेरे लिए सबसे नापसंदीदा मामला था, इसलिए एक दिन मैंने तंग आकर फैसला कर लिया कि मैं अपने आप को पानी में डुबा कर मार दूंगा। मगर जैसे ही मैंने पानी में छलांग लगाने लगता तो मुझे कोई पकड़ लेता और कहता, इकरिमा, अब तू इस्लाम लाए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि तुझ पर महबूब खुदा की नज़र पड़ चुकी है। एक और इसी तरह का वाकया है कि हज़रत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह तआला ने अपनी ईमान लाने के बारे में बयान करते हैं कि मैं गज़वाए हुनैन में काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा था। इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि मेरे वालिद और चचा को मौला अली और हज़रत हमजा ने कत्ल कर दिया था, मैं भी क्यों ना आज बदला लेते हुए इनके नबी मोहम्मद को शहीद कर दूं। चुनाचे इस इरादे से मैंने हुजूर के करीब हुआ, उसे अभी मैं हमला करने ही वाला था कि आग का एक बहुत बड़ा शोला बिजली की तरह मेरी तरफ बढ़ा। मैं उल्टे पांव पीछे भागा, इतने में अल्लाह के रसूल की नज़र करम मुझ पर पड़ गई। आपने मुझसे सिर्फ इतना फरमाया, ऐ शैबा, बस आपके मुँह से इतना ही निकला था कि मेरे दिल की कैफियत चेंज हो गई। अब मैंने हुजूर की मुबारक चेहरे की तरफ नज़र उठाई तो वो मुझे अब मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब लगने लगा। नाज़रीन, ये कमाल था, ये बरकत थी, ये मौजज़ा था प्यारे आका की नज़र करम का। इमाम अहमद रज़ा खान बड़ा ही खूब शेर लिखते हैं कि जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। आप इस शेर में कहते हैं कि मेरे आका की रहमत का आलम यह है कि जब उनकी रहमत का दरिया जोश में हो, यानी उम्मत की बख्शिश के लिए आंखों से आंसू जारी हों, तो आपकी बाबरकत आंसुओं ने जहन्नम के जलते शोलों को बुझा दिया है और उन शोलों से डर कर रोने वालों की शफात करके उन रोतों को हंसा दिया है। ये मतलब यह है कि जिस तरफ हुजूर ने निगाह रहमत से देखा, बदनसीबी की आग में जलने वालों को खुशनसीब बनाकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट के फूल खिला दिए।